विस्तृति ज्ञात किया जाता है जिसे WIJ से दिखलाया जाता है। इसके बाद प्रत्येक श्रेणी के अंकों का माध्य ज्ञात किया जाता है जिसे W से दिखलाया जाता है। माध्य ज्ञात करने में प्रत्येक श्रेणी के अंकों के जोड़ को उसकी संख्या अर्थात N से भाग दे दिया जाता है। इस माध्य के मूल्यों को बाईं से दाईं ओर की दिशा में संचयन किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक सांतत्यक साइकोलॉजिकल कंटिन्यूम का आधार बनता है। इसे CUMW- कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज 6। इसके बाद प्रत्येक कथन या उद्दीपक का मापनी मूल्य ज्ञात किया जाता है। मापनी मूल्य करने का सूत्र इस प्रकार है। सूत्र 30। यहाँ SI = कथन I का मापनी मूल्य, L = मनोवैज्ञानिक संतत्यक जिस पर माध्यिका पड़ती है, पर के अंतराल की निचली सीमा σPP इस अध्ययन पर जिसमें माध्यिका पड़ती है के नीचे के अनुपातों का योग, PW = उस अंतराल या श्रेणी का अनुपात जिसमें माध्यिका पड़ती है, यह उस अंतराल या श्रेणी जहाँ माध्यिका पड़ती है का अनुपात तथा उस अंतराल या श्रेणी का अनुपात जो माध्यिका वाला श्रेणी के ठीक नीचे होता है के अंतर के बराबर होता है। W = अंतराल का माध्य जिसमें माध्यिका पड़ती है। 7। अंत में प्रत्येक कथन के मापनी मूल्य की आंतरिक संगति की जांच कर ली जाती है। इसकी जांच मूलतः प्रत्येक श्रेणी के प्राप्त या अनुभाविक संचयन अनुपात का उसी श्रेणी के प्रत्याशित या सैद्धांतिक संचयन अनुपात से अंतर ज्ञात करके किया जाता है। यह अंतर जितना ही कम होता है कथन के मापनी मूल्य अधिक होती है। इसके लिए औसत माध्य विसंगति ज्ञात कर लिया जाता है। पैराग्राफ चेंज एक उदाहरण। मान लिया जाए कि 35 कथनों को 400 निर्णायकों ने क्रमिक श्रेणी या अंतराल की विधि द्वारा 9 बिंदु श्रेणियों में छांटा। इसमें से उदाहरण के रूप में कथन संख्या 1 और 2 के आंकड़ों को तालिका 31 में दिखलाया गया। इस तालिका में FCF तथा CP तीनों को ज्ञात करके दिखलाया गया है। तालिका 31 400 निर्णायकों जजेस द्वारा 35 कथनों में से 2 कथनों को विभिन्न क्रमिक अंतरालों में छांटने के उपरांत प्राप्त आवृत्तियां, संचित आवृत्तियां तथा संचित अनुपात। तालिका 31 के संचित अनुपातों को जिससे PIJ कहा जाता है अलग कर तालिका 32 में दिखलाया गया है। 2 कथनों का संचित अनुपात जिसे निर्णायकों द्वारा विभिन्न क्रमिक अंतरालों में छांटा गया था, PIJ को फिर सामान्य विचलनों में तालिका 27 की मदद से बदल दिया गया। अब माफ कीजिए, जब PIJ का मूल्य 0.02 से कम तथा 0.98 से अधिक होता है तो इसका जेड नहीं ज्ञात किया जाता है और ऐसी स्थिति में जेड मैट्रिक्स एक अधूरा मैट्रिक्स हो जाता है क्योंकि इसके कुछ सेल में जेड का मान 0 हो जाता है। तालिका 33 में PIJ को ZIJ में बदल कर दिखलाया गया है। तालिका 33 PIJ के आधार पर क्रमिक अंतरालों की ऊपरी सीमाओं का प्रसामान्य विचलन PIJ को ZIJ में बदलने के पहले उसे 2 अंकों तक पूर्णांकन कर लिया गया है। PJIJ ज्ञात कर लेने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि तालिका 32 का जेड मैट्रिक्स अधूरा है क्योंकि इसके कई सेल खाली हैं। ZIJ के आधार पर क्रमिक अंतरालों का विस्तृत निकाला जाता है। इसे WIJ कहा जाता है जिसमें I तथा JTH अंतराल की विस्तृति का पता चलता है। प्रत्येक रो में अंतरालों के क्रमिक घटाव द्वारा अंतराल की विस्तृत ज्ञात किया जाता है। जैसे प्रथम कथन के 5th अंतराल की विस्तृति W15 = -1.04 -100 - -1.64 = 0.60 है। इसी तरह अन्य सभी अंतरालों का WIJ ज्ञात किया जाता है। इसके बाद उसका माध्य किया गया है जिसे तालिका 34 में दिखलाया गया है। फिर W के मूल्य का बाईं से दाईं ओर संचित कर दिया गया है जो तालिका 24 के सबसे अंतिम रो में दिखलाया गया है तथा CUM W से सांकेतिक किया गया है। तालिका 34 अंतरालों की ऊपरी सीमाओं के आधार पर श्रेणी विस्तृत माध्य तथा संचित माध्य। अब सूत्र 30 द्वारा दोनों कथनों का मापनीय मूल्य इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तालिका दोनों कथनों का इस तरह से मापनीय मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। छात्रों को समझने के ख्याल से कथन ए के मापनीय मूल्य ज्ञात करने में निहित कदमों को इस तरह से समझाया जा सकता है। एक, सबसे पहले उस अंतराल का पता लगाया जाता है जिसमें n by 2 is equal to 400 / 2 is equal to 200 आवृत्तियां हैं। तालिका 31 में देखने से यह पता चलता है कि कथन संख्या 1 के लिए 200 संचयी आवृत्ति अंतराल 7th में है। दो, दूसरे चरण में सिग्मा पी बी का पता लगाया जाता है जो 7th अंतराल के ठीक नीचे यानी 6th अंतराल का संचयी अनुपात होता है। कथन संख्या 1 का सिग्मा पी बी इज इक्वल टू 0.400 है। इसे तालिका 32 में दिखलाया गया है। तीन, तीसरे चरण में पी डब्ल्यू ज्ञात किया जाता है जो n बाय 2 वाले अंतराल का सी पी या पी आई जे तथा उसी अंतराल के ठीक नीचे वाले सी पी या पी आई जे का अंतर होता है। तालिका 32 में देखने से यह पता चलता है कि n बाय 2 वाला अंतराल अर्थात 7th अंतराल का सी पी इक्वल टू 0.900 तथा 6th अंतराल का सी पी इक्वल टू 0.400 है जिसका अंतर 0.900 माइनस 0.400 इज इक्वल टू 0.500 हुआ। पैराचेंज चौथे चरण में उस अंतराल अर्थात n बाय 2 अंतराल का माध्य या विस्तृति ज्ञात करना होता है। प्रत्येक अंतराल का W ज्ञात करके तालिका 34 में दिखलाया गया है। 7th अंतराल का W इज इक्वल टू 1.21 है। पाँच, मनोवैज्ञानिक सांतत्यक जिस पर n बाय 2 पड़ता है के अंतराल की निचली सीमा ज्ञात किया जाता है। यह तालिका 34 में सबसे नीचे रो जिसमें कम W का मूल्य लिखा गया है से ज्ञात की जाती है। कथन संख्या 1 के लिए n बाय 2 7th अंतराल में ही है जिसकी निचली सीमा 1.94 है। 6, अंत में सूत्र 30 में प्राप्त मूल्यों को रखकर कथन संख्या 1 का मापनीय मूल्य ज्ञात किया गया है जो 2.182 आया है। उपयुक्त चरणों के अनुकूल ही अन्य कथनों का मापनीय मूल्य भी ज्ञात किया गया जाता है। रफ चेंज, कथन का मापनीय मूल्य जांच करने के बाद उसकी आंतरिक संगति की जांच की जाती है। इसके लिए प्रत्येक कथन का सैद्धांतिक संचयी अनुपात ज्ञात किया जाता है और उसकी तुलना प्राप्त संचयी अनुपात जिसे तालिका 32 में दिखलाया गया है के साथ की जाती है और दोनों के बीच का अंतर ज्ञात किया जाता है। यह अंतर जितना ही कम होता है कथन का मापनीय मूल्य उतना ही अधिक आंतरिक रूप से संगत माना जाता है। इसके लिए सैद्धांतिक संचयी अनुपातों को उनके चिन्ह का बिना ख्याल किए हुए एक साथ जोड़ दिया जाता है और उनकी कुल संख्या से भाग देकर औसत विसंगति ज्ञात किया जाता है। मान लिया जाए कि 35 उद्दीपकों या कथनों के लिए औसत विसंगति 0.62 आता है या इतना ही कोई दूसरा मूल्य आता है तो उसे एक सामान्य विसंगति माना जाता है और कथनों के मापनीय मूल्य को आंतरिक रूप से संगत माना जाता है। एडवर्ड्स ने अपने अध्ययन में 17 उद्दीपकों को क्रमिक अंतरालों की विधि द्वारा 10 पॉइंट में स्केलिंग करने पर औसत विसंगति 0.02 पाया जो इन उद्दीपकों के मापनी मूल्यों को आंतरिक रूप से संगत होने का स्पष्ट सबूत उपस्थित करता है। क्रमिक अंतराल की विधि के कुछ लाभ एवं परिसीमाएं हैं जिसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, क्रमिक अंतराल विधि द्वारा अधिक से अधिक उद्दीपकों का अध्ययन संभव है। इस अर्थ में यह विधि युग्मित तुलना विधि से श्रेष्ठ है जहाँ सफलतापूर्वक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उद्दीपक की संख्या कम हो, दो क्रमिक अंतराल विधि में निहित प्रयोगात्मक संक्रियाएं इतनी सरल एवं मितव्ययी हैं कि उसे अध्ययन में प्रयोग करना काफ़ी सुगम है। प्रमुख फलस्वरूप इस विधि से उपयोगिताएं अधिक हैं। इस विधि की कुछ परिसीमाएं भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, इस विधि में उद्दीपकों या कथनों की प्रति अनुक्रियाओं की प्रसामान्यता के वितरण की पूर्वकल्पना एक संकटपूर्ण अवस्था मानी गई है जिसकी जांच सामान्यतः कठिन होती है। इससे इस विधि पर आधारित उद्दीपकों के मापनी मूल्यों की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगती है। पैराग्राफ चेंज। दो, इस विधि में परिकलन के ख्याल से जटिलता होती है जिसके कारण इसका प्रयोग प्रारंभ करने में शोधकर्ता को कुछ हिचकिचाहट होती है। पैराग्राफ चेंज। इन परिसीमाओं के बावजूद क्रमिक अंतराल विधि एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि इस विधि की उपयोगिता अधिक है तथा इसके द्वारा अधिक से अधिक उद्दीपकों का स्केलिंग किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। मनोवृत्ति मापनियाँ एटीट्यूड स्केल्स। मनोवैज्ञानिक शोधों तथा शैक्षिक शोधों में मनोवृत्ति मापनियों की अहमियत काफ़ी अधिक है, अतः उन मापनी प्रविधियों का ज्ञान आवश्यक है जिसके आधार पर विभिन्न तरह की मनोवृत्ति मापनियों का निर्माण किया जाता है। इस मापनी विधि में निम्नांकित प्रमुख है। एक, समदृष्टि या तुल्याभासी अंतराल विधि। दो, संकलित रेटिंग्स की विधि। तीन, स्केलोग्राम विश्लेषण की विधि। चार, सामाजिक दूरी मापनी विधि। पाँच, मापनी विभेदन प्रविधि। इनमें से प्रत्येक मापनी विधियों की आलोचनात्मक प्रस्तुति आगे अलग अलग अनुच्छेदों में किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। तुल्यभाषी या समदृष्टि अंतराल विधि, मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल। इस विधि का प्रतिपादन भी युग्मित तुलना विधि के समान थर्स्टन 1928 तथा थर्स्टन एवं चेव 1929 द्वारा किया गया। सचमुच में तुल्यभाषी या समदृष्टि अंतराल विधि का प्रतिपादन युग्मित तुलना विधि मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन के महत्वपूर्ण दोष को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। युग्मित तुलना विधि का दोष यह है कि इस विधि का प्रयोग उद्दीपकों की संख्या अधिक रहने पर करना एक अत्यंत ही जटिल कार्य है क्योंकि सभी उद्दीपकों को संभावित सभी तरह के युग्म में देकर प्रयोज्यों या निर्णायकों का निर्णय या प्राप्त करना कठिन होता है। अतः एक ही प्रयोज्य एक ही उद्दीपक के बारे में कई बार अपना निर्णय देते हैं। उद्दीपकों की संख्या अधिक रहने पर इसमें जटिलता आ जाती है। इस दोष को दूर करने के ख्याल से थर्स्टन ने तुल्यभाषी अंतराल विधि का प्रतिपादन किया जिसमें प्रत्येक प्रयोज्य या निर्णायक प्रत्येक उद्दीपक के लिए एक ही तुलनात्मक निर्णय करता है। इस विधि में प्रत्येक कथन या उद्दीपक की मापनी मूल ज्ञात किया जाता है, फिर उसकी आंतरिक संगति की जांच की जाती है। इस विधि द्वारा मापनी बनाने में निहित कदमों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है। एक, मनोवृत्ति के वस्तु के विषय में बहुत सारे कथन तैयार कर लिए जाते हैं। इस कथनों में कुछ अनुकूल कथन होते हैं तथा कुछ प्रतिकूल कथन होते हैं। सामान्यतः कथनों की संख्या 100 से 200 तक की होती है। दो, प्रत्येक कथन के साथ साथ 11 बिंदु मापनी होते हैं जिनका एक छोर प्रतिकूल होता है तथा दूसरा छोर अनुकूल होता है। बीच का बिंदु तटस्थ जिसे F से दिखलाया गया है होता है। F से बाई और A से E तक प्रतिकूलता के 5 विभिन्न मात्रात्मक श्रेणियां होती हैं तथा उसकी दाई और जी से के तक अनुकूलता की 5 विभिन्न मात्रात्मक श्रेणियां होती हैं। इसे चित्र 7 में दिखलाया गया है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एच के प्रतिकूल तटस्थ अनुकूल 3 प्रत्येक निर्णायक जिसकी संख्या भी सामान्यतः 250 से 300 से कम नहीं होती है सभी कथनों को 11 बिंदु श्रेणियों में छांटते हैं। वे बारी बारी से एक एक कथन को लेते हैं और उसे इन 11 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु या श्रेणी में जिन्हें वे उचित समझते हैं रख देते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, परंतु थर्स्टन तथा चेफ ने यह बतलाया था कि 130 कथनों को 11 बिंदु में छांटने में निर्णायकों को औसतन 45 मिनट का समय लगता है। थर्स्टन तथा चेव ने इस विधि की दो महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना किया है जो निम्नांकित है। एक, सभी अंतराल या श्रेणियां अर्थात ए से के तक की श्रेणियां जिनमें कथनों को छांटा जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से समान होते हैं। दो, निर्णायकों की अपनी मनोवृत्ति का प्रभाव कथनों को छांटने की प्रक्रिया पर नहीं पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन निर्णायकों की मनोवृत्ति अनुकूल होती है तथा जिनकी प्रतिकूल होती है दोनों के ही द्वारा कथनों को समान ढंग से छांटा जाता है। पैराग्राफ चेंज। चार, कथनों को 11 बिंदु अंतराल में छांट लेने के बाद प्रत्येक कथन का सभी निर्णायकों द्वारा किए गए निर्णयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर माध्यिका ज्ञात किया जाता है। यही माध्यिका प्रत्येक कथन का मापनी मूल्य कहलाता है। पाँच, इसके बाद उन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक कथन का क्यू ज्ञात किया जाता है। क्यू से किसी कथन द्वारा अभिव्यक्त विशेषताओं या गुणों के बारे में निर्णायकों की असहमति की मात्रा का पता चलता है। वैसे कथन जिसका क्यों बड़ा होता है को इस ख्याल से अलग कर दिया जाता है उसके बारे में निर्णायकों में मतभेद अधिक है। छः, अंत में तुल्यभाषी विधि द्वारा मापने के लिए अंतिम रूप से उन कथनों को चुन लिया जाता है जिसमें आंतरिक संगति अधिक, जिसके लिए थर्स्टन एवं चेक 1529 ने एक कसौटी बनाया है जिसे संगति या असंगति की कसौटी कहा गया है। यहाँ पर सभी कथनों को निर्णायकों को इस अनुरोध के साथ दे दिया जाता है कि वे उन सभी कथनों पर टिक का चिन्ह या सही का चिन्ह लगा दें जिससे वे सहमत होते हों। उसके बाद यह देखा जाता है कि निर्णायकों ने जिन कथनों के साथ सहमति व्यक्त की है उनके मापनीय मूल्य क्या है। यदि निर्णायकों द्वारा जो किसी कथन के प्रति सहमत हैं ऐसे कथनों पर सही का चिन्ह लगा दिया जाता है जिनका मापनीय मूल्य उस कथन के मूल्य से काफ़ी भिन्न है, तो वैसी परिस्थिति में उस कथन को मापे जाने वाली मनोवृत्ति के संदर्भ में अयोग्य एवं असंगत समझा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वैसे कथनों को मापने से हटा दिया जाता है। सात, क्यू तथा संगति की कसौटी के आधार पर अंतिम रूप से तुल्यभाषी अंतराल विधि द्वारा 20 से 22 कथन का चयन कर लिया जाता है। इस तरह से मनोवृत्ति मापने तैयार हो जाता है जिसके आधार पर अब व्यक्तियों की मनोवृत्ति मापने का काम प्रारंभ किया जाता है। एक उदाहरण मान लिया जाए कि 100 कथनों को सहशिक्षा के प्रति मनोवृत्ति मापने योग्य समझकर शोधकर्ता ने उसे 400 निर्णायकों को इस अनुरोध के साथ दे दिया कि वे इन कथनों को दिए गए 11 बिंदुओं में छांट दें। उदाहरण के रूप में तालिका 34 को में 3 कथनों का इन निर्णायकों द्वारा किए गए निर्णयों की बारंबारता को तथा उससे माध्यिका एवं क्यू के मूल्यों को ज्ञात कर दिखलाया गया है। तालिका 34, इस तालिका में तीनों कथनों का प्रत्येक अंतराल में आवृत्ति एफ तथा उसके संचयी आवृत्ति को दिखलाया गया है तथा इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक कथन का माध्यिका जो मापनीय मूल्य है तथा क्यू अर्थात चतुर्थक है को ज्ञात किया गया है। माध्यिका सूत्र संख्या 31 से ज्ञात किया गया है। सूत्र 31, इसके बाद क्यू के मूल्यों के आलोक में वन हंड्रेड कथनों में से उन कथनों को हटा दिया जाता है जिसका क्यू मूल्य अधिक होता है। अंत में बचे हुए कथनों की मापनी मूल्यों की आंतरिक संगति ज्ञात कर ली जाती है। तुल्यभाषी अंतराल विधि के कुछ लाभ एवं परिसीमाएं हैं। इनके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, इन विधियों में कथनों की छंटनी 11 बिंदु में रखकर की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप बनने वाले मापनी में मनोवृत्ति मापने की क्षमता अधिक तीव्र होती है। दो, यह विधि सरल एवं सुगम है। इस विधि द्वारा मनोवृत्ति मापनी तैयार करने में शोधकर्ता को कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। इन लाभों के बावजूद इस विधि की कुछ परिसीमाएँ भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, फ्रेंसवर्थ 1943 ने यह दिखलाया कि थर्स्टन की यह पूर्व कल्पना के निर्णायकों द्वारा सभी 11 श्रेणियों या अंतरालों को मनोवैज्ञानिक रूप से समान समझा जाता है सही नहीं है। सच्चाई यह है कि निर्णायक इन सभी श्रेणियों को समान समझकर कथनों को नहीं छांटते हैं। दो, शोध वैज्ञानिकों के कथनों से स्पष्ट हो गया है कि निर्णायकों की अपनी मनोवृत्ति का प्रभाव भी कथनों को विभिन्न अंतरालों में छांटते समय पड़ता है। तीन एडवर्ड्स 1959 ने इस विधि पर एक दोष मढ़ते हुए कहा कि थर्स्टन ने इस विधि में एक ही अंतराल में आने वाले कई कथनों में से अत्यधिक भेदमूलक कथनों को चुनने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं बतलाया है। ऐसी संभावना हो सकती है कि दो या दो से अधिक कथनों का जिनका मापनी मूल्य करीब करीब समान हो परंतु वे भेदमूलक क्षमता में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हो। थर्स्टन विधि में सबसे अधिक भेदमूलक क्षमता वाले कथन को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रग चेंज 4 तुल्यभाषी अंतराल विधि में चूंकि निर्णायकों की संख्या एवं कथनों की संख्या दोनों ही अधिक होती है इसलिए उसमें समय तथा धन काफ़ी लगता है। चेंज इन सब परिसीमाओं के बावजूद तुल्यभाषी अंतराल विधि मनोवृत्ति मापनी बनाने की एक लोकप्रिय विधि है। आज भी इस विधि का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। पैराग्राफ चेंज संकलित रेटिंग्स की विधि मेथड्स ऑफ समिटेड रेटिंग्स मनोवृत्ति मापनी के निर्माण के लिए रेनेसिस लिकर्ट 1932 ने एक अन्य विधि का विकास किया। इस विधि को बर्ड 1940 ने संकलित रेटिंग्स की विधि की संज्ञा दी है। इस विधि को लिकर्ट विधि भी कहा जाता है। इस विधि में निहित प्रमुख चरणों की व्याख्या निम्नांकित है। एक शोधकर्ता मनोवृत्ति के विषय के प्रति कई कथनों को पर्याप्त संख्या में तैयार कर लेता है। इन कथनों की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो यह होती है कि इनमें से करीब आधे कथन मनोवृत्ति के विषय के प्रति अनुकूल तथा आधे कथन प्रतिकूल होते हैं। जैसे यदि कथनों की संख्या 100 है तो तकरीबन 50 इसमें से अनुकूल मनोवृत्ति वाले तथा 50 इसमें से प्रतिकूल मनोवृत्ति वाले होंगे। दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक कथन सामान्यतः 5 बिंदु वाले अनुक्रिया श्रेणियों के होते हैं। वे 5 बिंदु अनुक्रिया श्रेणियाँ हैं पूर्णतः सहमत सहमत अनिश्चित असहमत पूर्णतः असहमत। मान लिया जाए कि शोधकर्ता मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति मापने के लिए कुछ कथन तैयार करता है। इस तरह के कथन के दो उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। एक प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए मनोविज्ञान एक बहुत ही उपयोगी विषय है। पूर्णतः सहमत सहमत अनिश्चित असहमत पूर्णतः असहमत 5 4 3 2 1। दो मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान से व्यक्तियों के सामान्य ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती है। पूर्णतः सहमत सहमत अनिश्चित असहमत पूर्णतः असहमत 1 2 3 4 5। दो ऐसे कथनों की सूची को व्यक्तियों को दे दिया जाता है जो प्रत्येक कथन पर अपनी प्रतिक्रिया इन 5 बिंदुओं या श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में रखकर करते हैं। तीन व्यक्ति द्वारा प्रत्येक कथन पर दिए गए अनुक्रिया का अंकन विभिन्न भारों से या विभिन्न अंक देकर किया जाता है। अनुकूल कथनों के लिए पूर्णतः सहमत के लिए 5 अंक सहमत के लिए 4 अंक अनिश्चित के लिए 3 अंक असहमत के लिए 2 अंक तथा पूर्णतः असहमत के लिए 1 अंक दिया जाता है। प्रतिकूल कथनों में अंक या भार देने की पद्धति इसके विपरीत होती है। यहाँ पूर्ण असहमत के लिए 1 अंक सहमत के लिए 2 अंक अनिश्चित के लिए 3 अंक असहमत के लिए 4 अंक तथा पूर्णतः असहमत के लिए 5 अंक हैं। 4 जब प्रत्येक कथन पर दिए गए उत्तरों का अंकन स्कोरिंग कर दिया जाता है तो सभी कथनों पर दिए गए अंक को प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग जोड़ दिया जाता है। इसे कुल अंक या कुल प्राप्तांक कहा जाता है। 5 अंत में कथनों का चयन एकांश विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। लिकर्ट विधि में एकांश विश्लेषण का चरण एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके द्वारा उत्तम कथनों का चयन किया जाता है। थर्स्टन विधि में इस तरह के वैज्ञानिक चयन पद्धति का अभाव होता है। एकांश विश्लेषण करने में एकांश योग सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। कुछ लोगों जैसे एडवर्डर्स ने ऐसी परिस्थिति में एकांश विश्लेषण की एक अन्य विधि की सिफारिश किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कुल प्राप्तांक के आधार पर सभी व्यक्तियों के समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है उच्च समूह तथा निम्न समूह। इसके बाद प्रत्येक कथन पर इन दोनों समूहों के माध्यम के अंतर की सार्थकता की जांच टी परीक्षण ज्ञात करके की जाती है। यदि टी परीक्षण सार्थक होता है तो उस कथन को उस उत्तम कथन समझा जाता है और यदि सार्थक नहीं हुआ तो समझा जाता है कि कथन उच्च समूह तथा निम्न समूह में अंतर नहीं कर रहा है अतः इस कथन को एक उत्तम नहीं माना जाता है। तालिका 35 उच्च समूह तथा निम्न समूह द्वारा एक मनोविज्ञान मनोवृत्ति कथन पर दिए गए उत्तरों के माध्यम में टी परीक्षण द्वारा अंतर की सार्थकता की जांच आर रेशियो ज्ञात करने का एक नमूना तालिका 35 में दिया जा रहा है। इसमें मनोविज्ञान के प्रति मनोवृत्ति मापने की कथन संख्या 1 पर के आंकड़ों पर टी परीक्षण ज्ञात किया गया है। मान लिया जाए कि इस मापनी को कुछ 100 व्यक्तियों पर क्रियान्वयन किया गया, जिसे कुल प्राप्तांकों के आधार पर दो समूह, उच्च तथा निम्न समूह में बांट दिया गया और इस तरह से प्रत्येक समूह में 50-50 व्यक्ति हो गए। ऐसी परिस्थिति में टी ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है, टी ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है, सूत्र 33। यहाँ एक्स एच इज इक्वल टू उच्च समूह का दिए गए कथन पर माध्य, एक्स एल निम्न समूह का माध्य, एस टू एच दिए गए कथन पर उच्च समूह के अनुक्रियाओं के वितरण का प्रसरण, एस टू एल दिए गए कथन पर निम्न समूह के अनुक्रियाओं के वितरण का प्रसरण, एन एच उच्च समूह में प्रयोज्यों की संख्या, एन एल निम्न समूह में प्रयोज्यों की संख्या। अगर कहीं एन एच इज इक्वल टू एन एल इज इक्वल टू एन हो, जैसा कि उपयुक्त उदाहरण में है, क्योंकि दोनों समूह में 50-50 व्यक्ति हैं, तो सूत्र 33 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, सूत्र, चूंकि प्राप्ति का मान वैल्यू डी एफ इज इक्वल टू एन एच प्लस एन एल माइनस टू इज इक्वल टू 50 + 50 - 2 इज इक्वल टू 98 पर के 0.01 पर सार्थक है, अतः उक्त मापने के कथन संख्या एक पर उच्च समूह के औसत अनुक्रिया एवं निम्न समूह की औसत अनुक्रिया में सार्थक अंतर है, अतः इस कथन को एक उत्तम कथन मानकर मापने में रखा जाएगा। संकलित रेटिंग्स की विधि द्वारा तैयार मनोवृत्ति मापने में अंतिम रूप से 20 से 25 कथन होते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है, प्रयास यह की जाती है इसमें से आधे कथन अनुकूल हो, ताकि पूर्णतः सहमत की श्रेणी को 5 अंक दिया जा सके तथा आधे कथन प्रतिकूल हो, ताकि पूर्णतः असहमत की श्रेणी को 1 अंक दिया जा सके। इस तरह की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ती है कि प्रयोज्यों के अनुक्रिया पूर्वाग्रहों को नियंत्रित रखा जा सके। पैरफ चेंज लिकर्ट विधि के कुछ लाभ एवं परिसीमाएँ हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, लिकर्ट विधि का सबसे बड़ा लाभ या गुण यह बताया गया है कि इस विधि में एकांश विश्लेषण करके मूल भेदक कथनों को चुनने का वैज्ञानिक प्रावधान है। थर्स्टन विधि में इस ढंग का वैज्ञानिक प्रावधान नहीं है। दो, लिकर्ट विधि द्वारा मनोवृत्ति मापनी बनाना आसान है तथा उस पर आय प्राप्तांकों की व्याख्या भी काफ़ी सरल होती है। इस मापने पर उच्च प्राप्तांक का मतलब अनुकूल मनोवृत्ति तथा निम्न प्राप्तांक का मतलब प्रतिकूल मनोवृत्ति होता है। तीन, लिकर्ट विधि में लचीलापन का गुण होता है। शोधकर्ता आवश्यकता अनुसार उस विधि में कथनों की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह के घट बढ़ से लिकर्ट विधि द्वारा बनाई गई मापने में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि प्रत्येक कथन द्वारा मापन के समय योगदान होता समझा जाता है। थर्स्टन विधि में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कथन का मापनी मूल्य अलग अलग हो पाता है। चार, लिकर्ट विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों का क्रम सूचक सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से संभव हो पाता है। इन लाभों के बावजूद इस विधि में कुछ खामियां या परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक, लिकर्ट विधि का एक महत्वपूर्ण दोष यह बताया गया है कि इस विधि में उच्चतम प्राप्तांक का अर्थ तथा निम्नतम प्राप्तांक का अर्थ तो स्पष्ट होता है, परंतु तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्राप्तांकों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। व्यक्ति का कुल प्राप्तांक या अंक तटस्थ बिंदु पर दो भिन्न परिस्थितियों में आ सकता है। पहली परिस्थिति वह हो सकती है जहाँ प्रत्येक कथन या एकांश पर वह अपनी प्रतिक्रिया तटस्थ श्रेणी अर्थात अनिश्चित में व्यक्त किया हो, तथा दूसरी परिस्थिति वह हो सकती है जहाँ व्यक्ति ने कुछ कथनों पर पूर्णतः सहमत की श्रेणी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हो तथा कुछ कथनों पर पूर्णतः असहमत की श्रेणी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हो। स्पष्ट है कि तटस्थ बिंदु पर पहुँचने के इन दो तरीकों का मनोवैज्ञानिक अर्थ एक ही नहीं है। इस कारण भी तटस्थ पर प्राप्तांकों से कोई अर्थ निकालना कठिन है। दो, इस विधि में यह पूर्व कल्पना की जाती है कि कोई भी कथन का प्रत्येक दूसरे कथन के संदर्भ में समरूप भार होता है। यह एक वैध पूर्व कल्पना नहीं है। कोई विशेष कथन का अन्य कथन या कथनों की अपेक्षा व्यक्ति के लिए अधिक महत्व हो सकता है। विभिन्न व्यक्तियों में मनोवृत्ति समान मात्रा में भी ही हो सकती है, परंतु वे फिर भी एक ही कथन के प्रति विभिन्न ढंग से अनुक्रिया कर सकते हैं। दो, इस विधि में समान कुल प्राप्तांक पाने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति एक समान नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह विधि उतनी यथार्थ नहीं है। चार, संकलित रीडिंग्स विधि की वैधता भी संदेह के घेरे में होती है। कुछ शोध मनोवैज्ञानिकों जैसे ब्लैक एवं चैंपियन 1976 के अनुसार इस विधि में कथनों या एकांशों का संग्रहण शोधकर्ताओं के अनुभव एवं ज्ञान पर आधारित होता है, अतः इस बात की कतई संभावना बनी होती है कि कुछ ऐसे कथनों का भी संग्रह हो जाए जिसके द्वारा सचमुच में मनोवृत्ति का मापन होता ही नहीं हो। इन परिसीमाओं के बावजूद लिकर्ट विधि मनोवृत्ति मापने बनाने के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि है। थर्स्टन विधि की तुलना में, चूंकि इस विधि में अधिक सरलता, सुगमता एवं वस्तुनिष्ठता है, इसलिए इसकी लोकप्रियता अधिक है।